तेल का झटका और भारत, कच्चा तेल, रुपया और महंगाई। हर्षल दसानी द्वारा। मुख्य निष्कर्ष, ब्रेंट कच्चा तेल मार्च में $100 प्रति बैरल से ऊपर उछला और चरम पर $120 से पार हुआ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस संकट से प्रेरित था, तब से हाई $90 की ओर लौट आया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, इसलिए यह झटका एक साथ रुपए, महंगाई, चालू खाते और इक्विटी पर पड़ता है। रुपया डॉलर के मुकाबले रुपए 96 के करीब रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि ब्रेंट पर हर $10 की वृद्धि से भारत का वार्षिक आयात बिल अनुमानित $13.14 अरब बढ़ जाता है। तेल बिल बढ़ने के साथ चालू खाता घाटा तेजी से चौड़ा होने की ओर अग्रसर है। भारतीय इक्विटी के लिए कच्चे तेल के 3 चरण हैं, रैली, दायरा या जोखिमबंद। यह निर्भर करता है कि कीमतें कितनी ऊंची और कितनी तेजी से बढ़ती हैं। ब्रेंट कच्चा तेल मार्च में $100 प्रति बैरल से ऊपर उछला, घबराहट के चरम पर $120 को पार कर गया, और तब से युद्ध विराम की बातें आती जाती रहने के बीच हाई $90 की ओर वापस आ गया है। दुनिया के अधिकांश देशों के लिए यह एक सुर्खी है। भारत के लिए, जो अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, यह एक साथ सब कुछ पर लगा कर है, रुपया, महंगाई, चालू खाता और बाजार की नब्ज। ट्रिगर 2000 किलोमीटर दूर है। बिल मुंबई में आता है। शांति किसने भंग की? 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों ने फ्यूज जला दिया। कुछ ही दिनों में तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, वह संकरा रास्ता जिसके जरिए दुनिया के समुद्री तेल का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है, को प्रभावी रूप से बंद घोषित कर दिया। खाड़ी के उत्पादकों ने प्रतिदिन लाखों बैरल का उत्पादन रोक दिया। यूएई ने 1 मई को ओपेक से बाहर निकल गया। 3 महीने से ज्यादा समय बाद भी यह जलमार्ग एक भुथी राह बना हुआ है, सामान्य 100 टैंकरों के मुकाबले रोजाना मुट्ठी भर, जबकि जहाज मालिक बार बार होने वाली पुनरारंभ वार्ताओं के बावजूद वापस लौटने को तैयार नहीं। आपूर्ति का झटका वास्तविक है, और यह उस किस्म का है जिसे बाजार हेज करके नहीं टाल सकते। जब दुनिया का 5वां हिस्सा सवालों के घेरे में हो, तो मूल्य निर्धारण बैरलों की नहीं, सुर्खियों की बात हो जाती है। पहला प्रसारण, रुपया। तेल के झटके का भारत पर असर देखने का सबसे साफ जरिया मुद्रा है। रुपया डॉलर के मुकाबले रुपए 96 के ठीक नीचे रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, और इसका तंत्र एकदम यांत्रिक है। ब्रेंट पर हर $10 की वृद्धि भारत के वार्षिक आयात बिल में अनुमानित $13.14 अरब जोड़ देती है, यानी अर्थव्यवस्था को $13.14 अरब की अतिरिक्त डॉलर मांग पूरी करनी होती है, और यही रुपए को नीचे खींचती है। कमजोर रुपया फिर तेल बिल में वापस लूप कर देता है। डॉलर कीमत स्थिर रहे तो भी वही बैरल रुपए में महंगा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से खाद्य तेल तक हर दूसरे आयात पर भी असर पड़ता है। यही वह पहलू है जो भारत के लिए तेल के झटके को खास तौर पर घातक बनाता है। यह केवल ऊर्जा की गलियारे तक सीमित नहीं रहता। दूसरा प्रसारण, महंगाई। हेडलाइन सीपीआई अप्रैल में 3.48% पर पहुंच गई, एक साल में सबसे तेज। यह अभी भी रिजर्व बैंक के सहज दायरे के भीतर है, लेकिन असली बात दिशा है, और कच्चा तेल ही निर्णायक कारक है। अनुमानित नियम यह है कि ब्रेंट में हर टिकाऊ $10 की वृद्धि हेडलाइन महंगाई में लगभग 30 आधार अंक जोड़ती है, आंशिक रूप से सीधे ईंधन, परिवहन और आंशिक रूप से कमजोर रुपए के जरिए। अभी तक पंप को ढाल दी गई है, तेल विपणन कंपनियों OMCs और सरकार ने अधिकांश बोझ खुद उठाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल सीमित मात्रा में बढ़ाई हैं। इस कुशनिंग की कीमत है, यह OMCs के मार्जिन और राजकोषीय खाते पर पड़ती है, और यदि कच्चा तेल ऊंचा बना रहा तो यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। इससे आरबीआई असहज स्थिति में आ जाता है। उसने रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ थामे रखा है और उसे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आम राय यह है कि बढ़ोतरी तभी होगी जब महंगाई 6% की ओर टिकाऊ रूप से बढ़ती दिखे, एक ऐसा परिदृश्य जो जीवित हो जाता है अगर कच्चा तेल बस ऊंचा बना रहे। तीसरा प्रसारण, चालू खाता। कीमतों से परे भुगतान संतुलन पर नजर डाले तो दबाव सबसे स्पष्ट है। FY26 में भारत का तेल व्यापार घाटा करीब $120 अरब था और पूर्वानुमान लगाने वाले अब चालू खाता घाटे को GDP के 2.02% तक चौड़ा होते देख रहे हैं, एक साल पहले 1% से कम के मुकाबले, और यह लगभग पूरी तरह तेल की लाइन पर है। भारत का सेवा अधिशेष, उसका बड़ा बाह्य झटका अवशोषक, झटके को नरम करता है लेकिन मिटाता नहीं। चौड़ा घाटा ठीक वही है जो रुपए को नाजुक और विदेशी निवेशकों को सतर्क बनाता है, जो लूप को बाजार की ओर वापस ले जाता है। चौथा प्रसारण, बाजार। भारतीय इक्विटी ने यह सब महसूस किया है। सेंसेक्स और निफ्टी मई में क्रमश करीब 2.8% और 1.9% गिरे, जबकि पश्चिम एशिया, कमजोर रुपया, आयातित महंगाई की आशंका और विदेशी बिकवाली सब एक ही दिशा में खिंच रहे थे। इससे भी तेज दर्द पहले आया था। मार्च के मध्य में एक ही सत्र में सेंसेक्स 1460 अंक टूटा, जो 3 हफ्तों की उस खिंचाई का हिस्सा था जिसने निवेशकों की करीब ₹20 लाख करोड़ की संपत्ति मिटा दी। सूचकांक के नीचे तेल का झटका विजेताओं और पराजितों को तेजी से अलग करता है। गलत पक्ष पर कच्चे तेल के स्पष्ट उपभोक्ता हैं, तेल विपणन कंपनियां जो वैश्विक कीमतों और ढाले हुए पंप के बीच फंसी हैं, एशियन पेंट्स और बर्गर जैसी पेंट कंपनियां जिनके रेजिन और सॉल्वेंट कच्चे तेल के व्युत्पन्न हैं, विमानन क्षेत्र जहां जेट ईंधन एयरलाइन की लागत का 40-45% है और यह लगभग तिगुना हो गया है, इतना कि सरकार को किराए काबू में रखने के लिए ₹100 अरब की सहायता देनी पड़ी, और टायर, प्लास्टिक तथा रसायनों का व्यापक क्षेत्र। सही पक्ष पर ONGC और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम उत्पादक बैठे हैं, जिनके लिए ऊंची कच्चे तेल की कीमत बस अधिक राजस्व है, और अधिक सूक्ष्मता से IT और फार्मा में रुपयार्जक निर्यातक जिनके लिए कमजोर रुपया एक शांत अनुकूल हवा है, भले ही बाकी बाजार बिक रहा हो। जो स्तर मायने रखते हैं, रोजाना के शोर को छांटे तो कच्चा तेल भारतीय इक्विटी के लिए 3 चरणों में बंट जाता है। ब्रेंट क्रूड बाजार की प्रतिक्रिया व्याख्या $90 से नीचे राहत रैली, आयात बिल हल्का होता है, रुपए को सहारा मिलता है और महंगाई का भय कम होता है, जोखिम की भूख लौटती है। $90, $100 साइडवेज, दायरे में बंधा लागत असहज तो है पर झेलने योग्य, होमस का बादल ऊपरी चाल को सीमित करता है। बाजार किसी संकेत का इंतजार करता है। $100 से ऊपर नीचे का दबाव आयातित महंगाई, कमजोर रुपया और चौड़ा होता चालू खाता घाटा धारणा और आय को खींचता है। आज ब्रेंट हाई $90 में बैठे होने के साथ बाजार ठीक उसी बीच की पट्टी में है। यही कारण है कि वह किसी रुझान की बजाय आगे पीछे हिल रहा है। नजरिया, तेल का झटका उन दुर्लभ समष्टि घटनाओं में से है जो भारत की कहानी के हर हिस्से को एक साथ छूती है, मुद्रा, कीमतें, बाह्य खाता और सूचकांक, इसीलिए यह किसी एक बुरे प्रिंट से कहीं अधिक ध्यान का हकदार है। अच्छी खबर यह है कि इसका तात्कालिक कारण भूराजनीतिक है, और भूराजनीति उतनी ही तेजी से तनाव मुक्त हो सकती है जितनी तेजी से तनावग्रस्त हुई। जिस क्षण होमस वास्तव में खुलेगा, यह अधिकांश उलट जाएगा। जोखिम दूसरे रास्ते का है, कच्चा तेल इतने समय तक $100 से ऊपर बैठा रहे कि वह आधार मामला बन जाए। यही देखने लायक रेखा है, रोजाना का स्पॉट नहीं, बल्कि यह कि ऊंची कीमत टिकती है या नहीं, क्योंकि भारत एक उछाल सह सकता है जो वह आसानी से नहीं सह सकता, वह है एक पठार। यह सामान्य जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं।